मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। आठवीं गाथा समाप्त हो गई है समय सार परमागम की। अंतिम पंक्ति तीन पंक्तियां पढ़कर अपन आगे बढ़ेंगे। अतः हम सभी का परम कर्तव्य है कि निज भगवान आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुने, गहराई से समझें, उस पर गंभीरता से विचार करें और भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए उग्र पुरुषार्थ करें, क्योंकि मानव जीवन की सफलता आत्मानुभव करने में ही है। इस वाक्य में भी पांच लब्धियां आ गई हैं, समझे ना? ये विचार करेंगे गंभीरता से। तो देखो, असली धर्म तो आत्मानुभव में ही प्रकट होता है। बृहद द्रव्य संग्रह की ये गाथा है, उसमें ये लिखा है कि निश्चय और व्यवहार दोनों ही मोक्ष मार्ग झाड़े पाहुण ध्यान में ही प्रकट होते हैं। अंतर इतना है कि जो हमारे दिगंबर संतों का उस भूमिका में पहुंच करके होता है तो उसे हम ध्यान कहते हैं, और उसके पहले हम जो ग्रस्तों में जो होता है उसे हम सामायिक कहते हैं। और अपने शास्त्रों में बहुत कई जगह आया है कि ग्रस्तों को भी सामायिक करना चाहिए, अनुवृत्ति ग्रस्त हों। मुनिराज छह छह घड़ी सुबह दोपहर शाम को करते हैं, तो अनुवृत्ति ग्रस्त चार चार घड़ी सुबह दोपहर शाम को करें, अवृत्ति दो दो घड़ी करें, लेकिन अपने उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक शब्द भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन ध्यान का ही एक रूप है। पर ध्यान शब्द इतना महान है कि महाशास्त्र तत्वा सूत्र में जब उसकी चर्चा की तो उत्तम सहननई सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्ता इस रूप में की कि जिस ध्यान के बाद एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ही हो जाता है, उसके लिए ध्यान की बात उसमें की। तो ध्यान शब्द बहुत बड़ा है, ये तो निश्चित है कि तत्व का सुनना, बांचना, पढ़ना, विचार करना, पाठ करना, उपदेश देना, ये भी चलते फिरते दौड़ते धंधा पानी में उलझे खाते पीते तो होगा नहीं। ये सभी काम ऐसे हैं कि जब तक हम शांति से निराकुल भाव से एक स्थान पर और सारे विकल्पों को तोड़कर नहीं बैठेंगे तब तक नहीं हो सकते। और शास्त्रों में ऐसी बहुत मर्यादा है, बहुत अच्छी अच्छी मर्यादाओं का विवेचन है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये जो पांच लब्धियों का वर्णन किया, उसमें जो भी समझ लो, जो भी स्थिति आई आत्मानुभव तक, अब उसमें जो होता है वो तो होता ही है। अब उसे ध्यान नाम देना कि नहीं देना एक अलग बात है। दिक्कत ये है कि कुछ लोग ध्यान का इसलिए ध्यान के नाम ही पर विरोध करने लगते हैं, जैसे चलते फिरते खाते पीछे कुछ हो जाएगा। माने इस प्रवृत्ति का जो है ना अध्ययन मनन चिंतन, गृहस्थ अवस्था में तो ध्यान में क्या होता है? गृहस्थ अवस्था का जो सामायिक है, गृहस्थ अवस्था का जो पुरुषार्थ है, टोटम का, कभी बांसते हैं, कभी सुनते हैं, कभी विचारते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी चर्चा करते हैं, लिखा के नहीं लिखा। और ऐसा कब तक करे कि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो जाए, ऐसा लिख किया है। और बनासी दास ने भी एक कलश में लिखा है, भेद ज्ञान कब लो भलो कि जब लो मुकति न हो। वेद विज्ञान को मोक्ष की नहीं हो तब तक के लिए उन्होंने कहा है। वो वेद विज्ञान का कौन सा होगा? वो जो परम शुक्ल ध्यान है ना, वो उन रूप ही होगा, क्योंकि मोक्ष नहीं हो जब तक होगा तो ऐसा देह से जुदा वाले विकल्प आत्मा ऐसा थोड़ी होगा। और उस वक्त जो आत्मा जानने में आएगा वो तो देह से जुदा ही जानने में आएगा, कोई ऐसा थोड़ी को वहां मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन इस सम्मा दर्शन की भूमिका में के लिए कोई 24 घंटे के ध्यान की जरूरत नहीं होती है। 24 घंटे में तो कितने केवल ज्ञान हो जाएंगे? 30 केवल ज्ञान हो जाएंगे। 24 घंटे में कितने घड़ी होती हैं? 7 घड़ी होती हैं। मतलब 30 अंतर्मुहूर्त होते हैं, क्यों? एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है। तो ये नीचे की अवस्था में इन्हीं सबको राजवार्तिक में लिखा है कि जब ये विकल्पात्मक होती हैं, विचारात्मक होती हैं, तब इन्हें भावना कहते हैं, और जब ये ज्ञानात्मक रह जाते हैं तो इन्हें धर्म ध्यान कहते हैं। और ऐसी विचित्र बात है कि शुक्ल ध्यान तो सातवें अनुष्ठान के ऊपर होता ही है। जो लोग शुद्धोपयोग होता है कहते हैं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों अभय जी? ये जो चार पाए जो शुक्ल ध्यान के हैं, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, ये तो सब सातवें अनुष्ठान के ऊपर ही होते हैं। तो अब नीचे तो धर्म ध्यान के ही चार पाए रहे, और उनका तत्वासूत्र में जो विवेचन है, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इस रूप में ही है। ये तो सब विचय है, मान विचार है। भगवान की आज्ञा का विचार करना, भगवान की आज्ञा का विचार करना माने क्या? फिर उपाय विचय में भगवान की आज्ञा भी तो उपाय विचय ही है ना। उपाय विचय माने अपाय विचय कहो चाहे उपाय विचय कहो, मैंने मोक्ष का मार्ग के स्वरूप का विचार करना। तो आज्ञा विचय में उपाय विचय में क्या फर्क रहा दादा? यही तो फर्क रहा। आज्ञा विचय का मतलब यह है कि आलू में अनंत जीव हैं, अब ये आज्ञा से मान लेना, इसे माथा मत मारना, ये आज्ञा विचय है। कर्मराम योग में जो लिखा है वो चुपचाप स्वीकार कर लेना, ये आज्ञा विचय है। सुबह के आपके साथ प्रचन में थी चर्चा थोड़ी हमारे उन्होंने की थी है? हाँ, सुदर्शन लाल जी का, मैं नाम भूल जाता हूं मुझे है? ये चर्चा थी। उपाय विचय, विपाक विचय, अब ये क्या है? तो कर्मों का कौन से अनुष्ठान में कहां किस प्रकृति का उदय आता है, उसमें हम क्या करें? मतलब हम तो बस यही सोच सकते हैं कहां क्या लिखा है, भगवान सार में ये लिखा है, उसका विचार ही इस टाइप का होता है। बस ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार तो वहां होता नहीं है। आज्ञा विचय, उपाय विचय, आज्ञा विचय माने चरणान योग समझ लो मुख्य रूप से, उपाय विचय माने दिव्यान योग, विपाक विचय माने करुणान योग, संस्थान विचय मैंने भूगोल इतिहास के तीन लोग का नक्शा ऐसा है। ये सब बिल्कुल सारी बाहर की चीजें ही ज्यादातर है ना, और उनको धर्म ध्यान दिया, और पांचवा कोई धर्म ध्यान का नाम लिया नहीं उनने। तो ये जो प्रक्रिया इसमें बताई है आठवीं गाथा में, ये वही प्रक्रिया है कि तत्व का विचार, मंथन, रुचि की तीव्रता, और होते होते आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव तक पहुंचाने की बात कही ना उन्होंने इसमें पांचों लब्धियों की जब बात आई। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ बदल गया हाँ। आठवीं गाथा में यह कहा गया है कि परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार नए भी स्थापित करने योग्य है, परंतु प्रश्न तो यह है कि व्यवहार नए परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार है, और ये मुद्दा है। इसका उत्तर आगामी गाथाओं में दिया जा रहा है। सातवीं गाथा में कहा था चारों ही प्रकार का व्यवहार ही है, और आठवीं गाथा में कहा कि नहीं नहीं वो तो उपयोगी तो है, काय के लिए उपयोगी, धंधे पाने के लिए कि नहीं नहीं, वो ही जो परमार्थ आदमी गाथा में बताया है उसे समझने के लिए जे उपयोगी है। क्या सोनगढ़ का पंच कल्याणक था और सारे देश में आग लगी थी, गुजरात में तो खासकर बहुत विद्यार्थियों का आंदोलन बहुत तेज चल रहा था, बहुत भयंकर, और उस वक्त अपना पंच कल्याणक वहां भी हुआ था और सारे देश के हजारों लोग वहां पहुंचे थे। वहां कैलाश चंद जी, जगनमोहन लाल जी वगैरह भी आए थे, फूलचंद जी साहब थे, मैं भी था। तो एक उनका विद्वत सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, जिसके अध्यक्ष थे फूलचंद जी और कन्वीनर था मैं, और मुख्य अतिथि प्रमुख अतिथि जगनमोहन लाल जी, कैलाश चंद जी वगैरह थे। तो कैलाश चंद जी ने अपने मुख्य अतिथि के भाषण में कहा कि स्वामी जी कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, लेकिन ये हजारों लोग जब सारे गुजरात में आग लग रही है, क्या जो स्वामी जी के निमित्त सही तो आए हैं, है? उनकी वाणी सुनने के लिए ही तो आए हैं, क्यों कैसे कहते हैं कि निमित्त का महत्व नहीं है, क्या? और खूब जोर से उन्होंने कहा उस बात को, तालियां पिटी। सभी तरह के लोग थे, कोई तो समझे ही नहीं कि ये समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। स्वामी जी की तो महिमा ही थी ना, कि ऐसी गुजरात में आग लग रही है और सारे देश से लोग जान की जोखिम पर लेके यहां आ गए, क्यों थी ना, लेकिन साथ में गुरुदेव के निमित्त वाले उपादान संबंधी सिद्धांत पर कटाक्ष भी था, क्यों? तो मैं था कन्वीनर, आप तो थे ना युवराज जी, तो मैंने कहा कि पंडित जी ने कहा है कि गुरुदेव कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है और गुरुदेव के निमित्त से ही सब ये आए हैं। इसमें मैं इतनी बात और जोड़ना चाहता हूं कि ये सारे देश इस अंदर आग लगी है और फिर भी यहां इसलिए आए हैं कि निमित्त, ये सुनने के लिए आए हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे विरोधियों ने, जो हमें पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने घर घर जाकर के इनको एक कह दिया है कि स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो सुन तो लिया इन्होंने दूसरों के मुख से कि स्वामी जी क्या कहते हैं, लेकिन वो एक दफा कन्फर्म करना चाहते हैं कि ये लोग जो बता रहे हैं स्वामी जी सचमुच वैसा ही कहते हैं या नहीं कहते हैं। क्या तो ऐसी वो कहते हैं कि तुम व्यवहार में, व्यवहार में, अरे भैया वो व्यवहार में तो उसी परमार्थ का प्रतिपादन करता है, उसके बिना वो परमार्थ को प्रतिपादन करेगा कौन? व्यवहार में हे है और निश्चय न परम उपादे है, ये कथन कौन से नए का है? पंचाध्यायी में लिखा है, उसमें लिखा कथन मात्र से व्यवहार, मुंह से बोलते ही तो व्यवहार हो जाता है, वो तो चुप्पा है निश्चय ने, तो क्यों बोलते ही व्यवहार हो जाता है। इसलिए भाई इसी समय सार में आगे लागे लिखा कि इन दोनों में घनी मित्रता है, और मैं वो है ज्ञान क्रिया न परस्पर तीव्र मैत्री, है ना? राम और रावण भले ही एक दूसरे के जानलेवा शत्रु हों, लेकिन रामलीला में राम और रावण का पाठ करने वाले बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बाप बेटे ही हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो एक चल में व्यवहार में, और जो निश्चय में व्यवहार का निषेध करके निश्चय आता है, तो रावण को मारकर राम आता है, ख्याल में आई ना, लेकिन कि जिनवाणी में प्रतिपादन करने के लिए तो दोनों मित्र ही हैं। तो वो कहते भाई तुमने कह तो दिया ही आठवीं गाथा में, लेकिन नौवीं दसवीं गाथा में वो ये प्रश्न करते हैं कि ये कैसे, तुम कैसे कहते हो प्रतिपादक है, निश्चय व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, हम कैसे माने तुम्हारे कहने से मान लें। तो एक गाथा है, ऐसा जवाब है कि आपको लगे क्या जवाब दे रहे हैं। देखो गुरुदेव के जवाब ऐसे ही होते थे, थोड़ा नमूना बताऊं। कोई प्रश्न आता था उनके सामने कि साहब गोमठ सार में तो ऐसा लिखा है, समय सार में तो ऐसा लिखा है, टूर्णमल जी का प्रश्न करता सिर्फ ऐसा, तो उनका उत्तर क्या होता था, खबर छ बड़ी खबर छ हजारों श्लोक पढ़ा था। अरे भाई तुमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है ये हम नहीं पूछ रहे हैं। क्यों, इसमें उत्तर क्या आया? उत्तर ये आया कि तुम हमको इतना बड़ा मूर्ख मत समझो कि ये बात जो तुम कह रहे हो वो हमने पढ़ी नहीं है, और हमने वो पढ़ी है और सब ग्रंथ भी पढ़े हैं, उसके विरुद्ध प्रतिपादन है वो भी हमने देखा है, और उसके बाद हम कह रहे हैं अब इस वजनदारी के साथ तुम हमारी बात को सुनो और विचार करो, यहां पर माथा मारने की जरूरत नहीं है। क्या क्या आप कैसे हो जाएंगे, माने वो सारी अपेक्षाएं जो तुम प्रस्तुत कर रहे हो वो हमारे ख्याल में नहीं है, सो बात नहीं है, ऐसे ऐसे ही उत्तर दिए है बस। कैसा, जो ही सुदेन अधिगच्छति अपानमेणम तु केवलम शुद्धम केवली मिश्रणो मनंति लो यपदी बैरा जो सुदृणानम सब्बम। प्राणम अप्पा सब्बम तम्मा शुद्ध केवली तम्मा। अब क्या कि निश्चय शुद्ध केवली किसे कहते हैं और बिरहा शुद्ध केवली किसे कहते हैं, मुझे बताने लगे। क्यों वीरेंद्र जी, किसकी गलती है, कुंद कुंद की या अमरचंद की? कुंद कुंद तो बेचारे अपने लेन से बात करते जा रहा, घबराना नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अब अमरचंद ने कह दी कि ऐसा प्रश्न, पुण्य तो हेडिंग बनाया नहीं था कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, ये हेडिंग तो अमरचंद ने बनाया, तो उन्हें गाथा पढ़ के सोच समझ के बनाना था, वे तो अपना वर्णन करते जा रहे हैं जो भी उन्हें बात कहनी है। तो इसका मतलब ये है कि अमृतचंद को इन गाथाओं में इस प्रश्न का उत्तर नजर आया होगा, ये अमृतचंद की विशेषता है। पूज गुरुदेव श्री कुंद कुंद से ज्यादा अमृतचंद की प्रशंसा करते थे, और मालूम है क्या कहते थे, जंगी घोड़े को देखे कुतार गाय को दुहने वाला ग्वाला कैसा होगा तुम तो उसकी कल्पना कर लो। ये दोनों शब्दों का अर्थ करोगे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि क्या कह रहे, किसको जंगी घोड़ा कह रहे, किसको भंगी सवार कह रहे, और तो कुतार गाय किसको कह रहे हैं। तो अगर कुंद कुंद की जो वाणी है वो कुतार गाय है, कुतार गाय माने कि उसका दूर दो तो लाते मारे सींग मारे जो भी कर सकती है वो करे, उसको कुतार गाय बोलते हैं। और मजबूत ग्वाला जब उसको पकड़ के बैठ जाए उसको भी दुहले, पूरा का पूरा दुहले, हर एक के बस की बात नहीं है। तो अमृतचंद समय साल रूपी कुतार गाय को दुहने वाले वो मजबूत ग्वाले थे कि उसका माल उन्होंने अंदर से निकाल दिया, हर एक आदमी के बस की वो बात नहीं है। अरे उत्तर क्या, गाथा क्या कहती है कि जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा अकेले आत्मा को जानते हैं वो निश्चय शुद्ध केवली है, और जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा द्वादशांग को जानते हैं वे व्यवहार शुद्ध केवली है। अब ये उत्तर है, अब कहते हैं निश्चय व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे, और उत्तर भी है निश्चय व्यवहार देखे जो बता दिए शुद्ध केवली पे घटित करके। अब देखो अपन निकालेंगे बाद में, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा झगड़ा यह है कि उन्होंने दो पार्टियां खड़ी कर दी, एक निश्चय शुद्ध केवली वाली एक व्यवहार शुद्ध केवली वाली। इस गाथा को समझने में जितनी गलती की गई उतनी शायद ही किसी गाथा को समझने में की गई हो, और बड़े बड़े पंडितों ने इस गाथा को तो उन मुख्य गाथाओं में रखा ही नहीं। तो 11वीं है, 31वीं है, 32वीं है, 33वीं है, 38वीं है, 73वीं है, क्यों? बोले ऐसा लग जाता है, इसको तो नहीं रखा। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये गाथा में कितना गड़बड़ हुआ कि सुत केवल जो अकेले आत्मा को जाने, तो जो सम्मा दर्शन हुआ जिन्हें चौथे गुणस्थान में वे सुत केवल हो गए उनके हिसाब से, वही चौथे गुणस्थान वाले सुत केवल हो गए, आप समझ ना, केवल आत्मा को जाने तो वे सुत केवल होते, उनने आत्मा को जान लिया है। अब व्यवहार वाले करने के दो आत्मा को जाने चाहे न जाने, द्वादश अंग के पाठी हो जाए तो वे सुत केवल, द्वादश अंग के पाठी कैसे हो जाएंगे आत्मा को जानने के, वो बाद में निपटते रहेंगे। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि द्वादश अंग का पाठी हो और आत्मा का ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान से शून्य हो तो वो निकाल है, द्वादश अंग का पाठी नहीं लिखा होता नहीं है, वो नक्की बात है। लेकिन भाषा तो ऐसी आई है ना आगम में, तो एक द्वादश अंग के पाठियों के सुत केवलियों का एक अलग गांव होगा और निश्चय सुत केवलियों का एक अलग गांव होगा। लेकिन भाई साहब ये निश्चय व्यवहार सुत केवली दो व्यक्तियों का नाम नहीं है, एक व्यक्ति ही और एक ही समय में, ऐसा नहीं कि जब वो शास्त्र पढ़ रहा जब व्यवहार सुत केवली और आत्मा का अनुभव कर रहा हो जब निश्चय सुत केवली है, वो ही व्यक्ति निश्चय सुत केवली है और वो ही व्यक्ति व्यवहार सुत केवली है। अंतर तो सिर्फ इतना है कि आत्मा को जानने के कारण उसे निश्चय सुत केवली कहते हैं और संपूर्ण द्वादश अंग को जानने के कारण उसे व्यवहार सुत केवली कहते हैं। इतनी ही बात है, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं और हर सुत केवली को ये दोनों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, घबराना नहीं, तब वो सुत केवली कहलाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि अकेले आत्मा को जानता तो सुत केवली कहता। मैं आपसे पूछता हूं कि केवली भगवान हुए, कलयुगल जी का दोपहर में व्याख्यान चल रहा था ना, तो सुत पंचमी पे चल रहा था, तो उन्होंने केवली बताया, भगवान महावीर है, महावीर इसके बाद में गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, फिर भद्रबाहु तक सुत केवली है, पांच बताया ना सब। तो भद्रबाहु के बाद कौन हुआ सुत केवली? नहीं हुआ। कोई आदमी बता सकता है भद्रबाहु के बाद हुए सुत केवली का नाम है? मेरे महावीर के बाद हुए हैं बहन जी केवली, महावीर के बाद केवली हुए हैं, गौतम स्वामी के बाद सुधर्माचार्य, पहले महावीर के बाद गौतम स्वामी केवली हुए, गौतम स्वामी के 12 वर्ष बाद सुधर्म स्वामी, सुधर्म स्वामी के 12 वर्ष बाद जम्बू स्वामी, इन तीनों को अनुबद्ध केवली कहते हैं। हाँ, तो अपनी बात क्या चल रही थी कि भद्रबाहु के बाद कोई सुत केवली नहीं हुआ और भद्रबाहु को कम से कम 2100 वर्ष हो गए। तो यदि यदि निश्चय सुत केवली सम्मा दृष्टि को कहते होंगे और उसके बाद शास्त्र कहते हैं कोई सुत केवली नहीं हुआ, इसका मतलब उसके बाद कोई सम्मा दृष्टि नहीं हुआ, तो कुंदी कुंद का क्या हुआ? उसके मतलब भद्रबाहु की पांचवी पीढ़ी में है कुंद कुंद जगन्मल जी, तो वे सम्मा दृष्टि थे क्या नहीं थे? देखो वो शास्त्रों में ये तो यहां बताई है कि अब निश्चय से आत्मा को जाने सुत केवली, लेकिन कौन जिसने द्वादश अंग को जाना है ऐसा व्यक्ति, वो जो आत्मा को जानता है उसके कारण उसका नाम निश्चय केवली पड़ता है और उस द्वादश अंग को जानने के कारण उसका नाम व्यवहार केवली पड़ता है। तो बहुभद्र स्वामी के बहुभद्र स्वामी के बाद नहीं हुआ कोई सुत केवली, सम्मा दृष्टि तो हुए हैं, तो उसके बाद में समझ लीजिए कि वो अर्थ करने से जो के वो तो वो ये अनर्थ हो जाएगा। अब कितने लोगों के वे सुत केवली मतलब वे हो जाएंगे ये तो उन्हें पता नहीं, लेकिन मैं तो सुत केवली हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आत्मा को जाना है। कि कौन कहता है? कि मैं कहता हूं और मेरे दो चार चेले चांटे कहते हैं। उतना मेरी संतोष कहां होता है फिर मैं तो केवली ही हूं। ऐसा भी अभी एक मत है अपने मोक्षों में। किरण जी मेरे पास आए थे इतने पोथर ना ले लेके, मैंने कहा मेरे पास भैया समय नहीं है ना, मुझे देखने का ना बोलने का ना पढ़ने का ना बजाने का। भाग्य की बात है कि जब मैं ऑपरेशन कराने जा रहा था, मैं बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, उसके 15 दिन पहले आए, तो मैं सचमुच इस स्थिति में नहीं था, मैं पढ़ता क्या किसी से बात करता। अभय कुमार जी भले उनने तो यही समझा कि जी हमसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे तत्काल 15 दिन बाद अस्पताल में ही पड़ा था। लेकिन ये बात भी सही है कि मैं स्थिति में नहीं था, लेकिन होता तो भी मैं वो बात करने को तैयार नहीं था, ये बात भी सही है। केवल ज्ञान टोटा मल जी कितना साफ लिखते हैं कि यदि केवल ज्ञान होता अंदर में तो सुमेर पर्वत आरे आ जाए तो भी केवल ज्ञान उसके बाद की बाहर की बात जान लेता कि नहीं जान लेता है, तो थोड़े मोड़े कर्म मर्मों से क्या होता है, ये तो कितना सूक्ष्म है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि वो श्रुत केवली की परिभाषा तो पहले एक आप समझ लो, नक्की कर लो, विस्तार से देखना है तो इन्हीं गाथाओं में जो है ना अपना समय सार का अनुशीलन भाग एक उसमें देखना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वहां बहुत विस्तार से मैंने सब बातें लिखी हैं। तो यहां तो ये कहता हूं पहले, यहां इतना मान लेना अभी अपन जो अपनी बात करना चाहते हैं उसके संदर्भ में कि एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, दो व्यक्ति नहीं है। अब वो कहते हैं कि आत्मा को जानने के कारण वो निश्चय कर दी और लोकालोकों के जानने का व्यवहार कर दी, तो उन्होंने उसमें तर्क क्या दिया है कि ये बताओ कि वो जो श्रुत ज्ञान है जिसमें आत्मा जाना जाता है वो द्वादशांग जाना जाता है, वो श्रुत ज्ञान है वो आत्मा है कि अनात्मा, ऐसा प्रश्न किया अमृतचंद ने, तुम बताओ हमें कि वो आत्मा है कि अनात्मा, वो श्रुत ज्ञान। तो अनात्मा तो तुम कह नहीं सकते, खुद ही कहते हैं, बोलने नहीं देते सामने वाले को। अनात्मा तो तुम कह नहीं सकते क्योंकि अनात्मा तो आकाश आदि द्रव्य है, पुद्गल आदि द्रव्य है, तो आकाश और पुद्गल जैसा तो वो है नहीं, कौन तो फिर क्या कहोगे, तो गत्यंतराभावात। क्या गत्यंतराभावात माने दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो तुमको आत्मा ही कहना पड़ेगा। तो जब श्रुत ज्ञान भी आत्मा है तो आत्मा को जाना के श्रुत ज्ञान को जाना क्या फर्क पड़ा, तो एक ही बात तो हो गई। वो कहते हैं यदि ऐसा नहीं कह गए, ऐसा ही मान लें कि नहीं नहीं वो अकेला आत्मा को जानना श्रुत ज्ञान को, तो दो पार्टियां खड़ी होती हैं। श्रुत ज्ञान को तो हम आत्मा को जानने के लिए जानते हैं। अब मैं पूछता हूं कि बोलो हमें आत्मा को समय सार को जानना के समय सार को जानना नहीं आया समझ में, फिर बोलता हूं समय सार को जानना के समय सार को पढ़ना। अब किस प्रश्न हो गया, समय सार माने शुद्ध आत्मा, उसे जानना के समय सार पढ़ना, बोलो तो कहते समय सार को जानने के लिए समय सार को पढ़ना। कैसी बात करते हो, अरे तो समय सार को जानना तो समय सार को नहीं पढ़ोगे, क्या करोगे। मेरा कहने का हम ये कहें समय सार को पढ़ो तो उसका अर्थ भी ये होता है कि आत्मा को जानो, और हम ये कहें कि आत्मा को जानो तो उसका अर्थ भी होता है आत्मा को जानो, तो हम दोनों ही बातें आत्मा को जानने की ही कह रहे, हम स्वाध्याय करने की बात कह रहे हैं तो दोनों ही बातें आत्मा को जानने की कह रहे। रतन सार की अष्टमी गाथा में उन्होंने मोह के नाश का उपाय बता दिया, उन्होंने सम्मदर्शन की प्राप्ति का उपाय बता दिया, क्यों व्यासी में बता दिया कि इसी मार्ग से सब लोगों ने मोह का नाश करके केवली हुए हैं, ख्याल में है ना। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो मोह क्या है, तो 83 में वो बता दिया, दिव्यादि में मूढ़ भाव वो मोह है, ऐसा है ना। फिर कहते गए तब वो कहता है हाथ खड़े कर दिए गए, ये तो तुम्हारा बहुत कठिन है, क्यों कहां उत्पाद वह धूप और अनुस्थिति से रचित प्रभाव कहां कहां चक्कर डाले हम हैं, क्यों तो हमें तो कोई उपायांतर बताओ, कोई सरल उपाय बताओ। तुम कहो तो 10 उपवास ठोक सकते हैं हम, इसको 10 उपवास सरल लगते हैं और समय सार पढ़ना कठिन लगता है। ये सत्य घटना है। जब हमारे गांव में हम पढ़ते थे ना पहली दूसरी क्लास में मोहनलाल जी, तो हमारे गांव में स्कूल भी नहीं था। तो एक कास्ट का लड़का था श्रीवास्तव, तो वो ट्यूशन से पढ़ाता था और एक एक आना दो दो आना महीना लेता था पढ़ाता, 5 साल पढ़ाता था। तो हम भी पढ़ते थे उसमें, तो किसानों के लड़के भी पढ़ते थे। तो एक किसान और उस वक्त लड़के आते नहीं थे, तो उनके घर पर हमको भेजते थे वो, और उस लड़के को पकड़ के लाओ। तो वो तो आसानी से तो आता नहीं था, अड़ जाता था घर में। तो एक लड़का एक टांग पकड़ता, एक लड़का दूसरी टांग पकड़ता, एक ये हाथ ऐसे पकड़ के ऐसा डोला डाली लेकर के ऐसे आते थे। वो जमाना की तुम तो कल्पना लोक की बातें समझोगे, तुम क्या समझोगे वो जमाना हमने आंखों से देखा है। तो एक दिन की सच्ची घटना है कि हम लोग गए दरवाजे पर खड़े थे, फला है कह रहे थे, और लड़का अंदर अंदर रो रहा था और माँ और बेटे का संवाद चल रहा था। तो माँ कह रही थी नहीं बेटा चला जा, बेटा चला जा। मैं नहीं माँ, हर हाथ खाऊंगा लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। समझे इसका अर्थ? क्या नहीं समझे? हर हाथ खाऊंगा माने मैं किसान खेती करूंगा और खेत में खुद हल चलाऊंगा। उसे बोलते हर हाथ ना, हल मन समझ गया ना, हल चलाऊंगा लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो मुझे विचार आया, अभी भी आता है आज तक भी, कि उसे खेत में हल चलाना पसंद, माने पृथ्वी रूपी कागज पर हल रूपी कलम से इतने गहरे अक्षर खोदना समझ गए ना, 1 फुट गहरे अक्षर खोदना, और वो जेठ की दोपहरी में भयंकर गर्मी में, क्यों? ये उसे स्वीकार है। और उस जमाने में कागज कलम तो नहीं थी, वो खड़िया और स्लेट भी नहीं, पट्टी। तो उस पट्टी पर ऐसी उससे खड़िया से ये चलाना ऐसे कठिन दिखता है, वो हल चलाना सरल दिखता है। और बिल्कुल छाया में बैठकर दोनों में अंतर समझ में आ रहा ना, छाया में बैठकर खड़िया लेकर और उस पर ऐसा अक्षर ऐसा फेरना एक कठिन, और खेत में दोपहरी में हल चलाना उसे सरल दिखता, ऐसा क्यों? मां का जवाब भी सुनना है। मां कह रही थी कि बेटा हल तो चलाना ही है, लेकिन 2 अक्षर पढ़ लेगा तो बनिया 12 लिख देकर 12 नहीं लिख पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो थोड़ा पढ़ लेगा तो बनिया तेरे को 12 माने समझते हो, झाड़ू लगाने वाले को 12 बोलते हैं, और 12 माने 12। तो एक 12 ले गए बनिया के यहां से, वो तो 12 लिख दिया, 12 लिख दिए, और फिर बताया कि तुम 12 ले गया था, हाँ साहब ले गया था 12। तो बस ठीक है जी, हो गए 25 रुपये दे दे। तो 12 लिखकर 12 नहीं ले पाएगा, बस तेरा इतना फायदा होगा तू पढ़ लेगा 2 अक्षर तो तू कलेक्टर बनने वाला, उस जमाने में कहते जंट साहब बनने वाला नहीं है। जंट साहब समझते क्या होता है? ज्वाइंट कलेक्टर। तो जो जिले में रहता था कलेक्टर, वो तहसीलों में रहता था ज्वाइंट कलेक्टर, जो आजकल SDO बोलते, जिसे सब डिविजनल ऑफिसर बोलते ना, उस जमाने में जंट साहब बोलते, जंट साहब के जंट साहब थोड़ी बन जाएगा तुम। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैं उसका उत्तर ये है कि अनभ्यास के कारण। वो जब जिस दिन से पैदा हुआ तो उसकी मां महीना भर का नहीं हुआ खेत में ले गई और खेत की मेड़ पर डाल दिया, और बाप हल चला रहा था, मां रोटी लेके ले गई थी, वो पीछे पीछे अनाज डाल रही थी खेत में, तो उसने जन्म से वो ही देखा है, तो उसे वो सरल लगता है, पर स्कूल देखा ही नहीं है इसलिए कठिन लगता है। माने अत्यंत सरल विषय भी कठिन लगता है और अत्यंत कठिन विषय भी सरल लगता है, अभ्यास के कारण और अनभ्यास के कारण। अभ्यस्त विषय अनभ्यस्त विषय आ गया ना, ख्याल में है ना? तो ऐसे ही यहां कहते हैं दो दशाओं के कौन पड़ेगा हाय राम, और आत्मा जान लेंगे फटाफट, आत्मा को जाना हो गए फटाफट, हमें तो सस्ता वाला काम पसंद है, समय सार, उम्र सार, फलाने सार, फलाने सार है, इतना सार हमें नहीं पढ़ना, हमें तो अकेला आत्मा को जानना। ये आलसी प्रकृति के लोग हैं, समझे ना। पर वो उसका उदाहरण सबसे बढ़िया वो बालक है, हर घास खाऊंगा। अरे आत्मा, ये द्वादश अंग में आत्मा की बातें तो लिखी है, आत्मा के अलावा है क्या? चाहे द्वादश अंग को पढ़ो ये कहें, और चाहे आत्मा को जानो ये कहें, एक ही अर्थ है। चाहे समय सार पढ़ो ये कहें, और चाहे आत्मा को जानो एक ही, दो काम ही नहीं है। द्वादश अंग पढ़ो क्यों? क्योंकि भैया द्वादश अंग में आत्मा का स्वरूप बताया है। अब ये तुम्हारा जो काम आत्मा का जानने का होगा, ये तो कर्ण लब्धि के बाद होगा, कर्ण लब्धि में भी नहीं, कर्ण लब्धि के एक समय बाद, अंतिम समय कर्ण लब्धि का निकल जाएगा, फिर जो पहला समय आएगा ना, तब आत्मा का अनुभव होगा। और इस द्वादश अंग का पाठ ये देश देशना लब्धि से शुरू हो जाएगा। तो पहले ये होता है क्या? नहीं ख्याल नहीं ना, वो प्रक्रिया की बात है। वो निश्चय व्यवहार साथ साथ होते हैं, पहले होते हैं, फिर वो बाद में अलग से निपट लेंगे, है ना। आदमी समझ में आया ना? तो ये बोलो, ये पहले ये बोले कि द्वादश अंग का पाठ समय सार पढ़ो, ये बोले समय सार पढ़ाए कि आत्मा पढ़ाए? क्या रखा समय सार में? शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, और शास्त्र ज्ञान नहीं है कुछ क्योंकि शास्त्र है शास्त्र कुछ जाने नहीं है, इसलिए तो आत्मा अन्य है और शास्त्र अन्य है। क्यों? ये लिखा है ना समय सार में, क्या उत्तर दें? बोलो बेबे, खबर छे, बड़ी खबर छे। ये कथा है हमने पढ़ी नहीं है, इसका हमने पद्यानुवाद लिखा है, हमने इसकी टीका लिखी है, तो हमें बता रहे हो कि ये लिखा है। अरे उसमें तो शास्त्र ज्ञान नहीं है और शास्त्र कुछ नहीं जानता है, ये लिखा है, इसमें कहां गड़बड़ है? इसमें इस किताब में ज्ञान नहीं है, अजीब है, और एक शास्त्र कुछ जानता नहीं है, इसमें कहां गड़बड़ है? लेकिन तेरे जानने में इस शास्त्र का स्वाध्याय निमित्त है, और तेरा स्टार्टिंग यहां से होगा, आगम के सेवन से शुरू होगा, फिर युक्ति के अवलंबन से शुरू होगा, फिर परंपरा गुरु का उपदेश से आएगा, तब चौथा छेद है कि वो उसमें क्या है, आत्मा के अनुभव में जाएगा। ऐसी बात है ना कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, और क्या बनना है कि हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, बिल्कुल ऑपरेशन करना सीखना है। लेन लगी रहती है बड़ी बड़ी, एक एक ऑपरेशन करते हैं, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं, बस मेरे को तो वो करना है, बस सीधी वो पढ़ाई पढ़ेंगे पापा, उसमें तो उस स्कूल में जाऊंगा, तो उसमें जाना है ना तेरे को, तो कॉलेज नहीं, कॉलेज में नहीं जाना, उसमें जाना है। फिर कॉलेज में जाए बिना बेटा उसमें नहीं जा पाएगा, मेडिकल कॉलेज में। अच्छा ठीक है, तो फिर मेडिकल कॉलेज में जाना है ना, भर्ती करा दो मेरे को। कहने नहीं, नहीं पहले वो बायोलॉजी में तो उसको बीएससी एमएससी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कहने नहीं वो नहीं करूंगा, मैं तो सीधा जाऊंगा, ये तो बिल्कुल शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र पे ज्ञान नहीं है। अरे पहले फिर 9वीं 10वीं पास करनी पड़ेगी, उसके पहले 7वीं करनी पड़ेगी, फिर 6वीं करनी पड़ेगी, फिर 5वीं करनी पड़ेगी, फिर 4वीं करनी पड़ेगी। क्यों बेटा? चुपचाप चल और एबीसीडी पढ़ने चल, पहली क्लास में चल। क्या बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ऑपरेशन करना है, सर्जन। तो भी पहली क्लास से अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला शुरू होगा। क्या समझे ना? क्या? हाँ, तेरे को हम डॉक्टर बनाने ही ले जा रहे हैं, और डॉक्टर बनाने ले जा रहे हैं, और एक महिला के यहां बैठा रहा है कैसे पढ़ाओ एबीसीडी, कि हार्ट की तो हमें बात ही नहीं बताते हैं। आएगा हार्ट की बात? तो ये कहते हैं आत्मा जानना है, तो ये आत्मा जानने की तो विधि बता रहे, ये सारा आत्मा जानने की तो विधि है ना। क्यों? फिर हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए तो हे है, हमारे लिए तो हे है। अरे भैया, जिनने आत्मा जान लिया था उनको हे नहीं हुआ, वे ही पढ़ते रहे, वे ही लिखते रहे। हम कब कहते कि तू नहीं जान आत्मा को? लेकिन आत्मा जो तेरी भूमिका है, उसमें 6 महीना में एकाध समय ऐसा आएगा जब तेरे को आत्मा सीधा जानने में आएगा, ताकि जनमानी से ही जानने में आएगा, हैं? अनुवृत्ति हो जाएगा तो 15 दिन में ऐसा समय आएगा, मुनिराज हो जाएगा तो अंतर्मुहूर्त में ऐसा समय आएगा। क्यों? और फिर उसी पर एक समय भी बाहर नहीं आए, हमें तो ऐसा चाहिए, तो श्रेणी मारेगा तब उसमें ऐसा समय आएगा। और मैं अभी श्रेणी मार लूं तो यहीं बैठा बैठा मार लो, हमें क्या करना, मर जाए तो मार लो। ऐसा कहते थे हम रोक रहे हो, हम कौन होते, हम तो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। आगम में लिखा है कि इसकी विधि ये है, इतना समय होता है, इसके पहले ये भाव नहीं होता है। मेरे ख्याल में है ना, इसका एक काल है, आता है कसाओं का वासना काल गोमर साल में, हम तो वो बता रहे कि किस भूमिका में कितने लेवल का क्या होता है। तो तुम 24 घंटा इसमें नहीं लगता है, इसलिए क्या होता है, देखो थोड़ी कड़वी बात कहता हूं, समय भी हो गया लेकिन कहता हूं। हाँ हमको तो छोड़ दो, हम सब घर छोड़ देते हैं, हम तो हमने कहने कोई मैं शादी नहीं करूंगा, कोई ने शादी कर ली तो छोड़ दूंगा, फिर मैं तो जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं 24 घंटा आत्मा का कल्याण, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन जितनों ने ये घर छोड़ा वो एक भी आत्मा का कल्याण करते मुझे दिखाई नहीं दिख रहे, उनसे ज्यादा दिख रहे जिनने नहीं छोड़ा। इतना समझ लो, तुम्हारे को मेरे पे भरोसा नहीं हो तो निगाह डाल के चारों तरफ देख लेना, पूरे हिंदुस्तान में और अमेरिका में भी सब जगह अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर उन्हें घर नहीं बसाया ना। क्यों अपने अड़ोस पड़ोस तक जितना पढ़ने पढ़ाने का काम किया है, शास्त्रों के लिखने का काम किया है, हमारा काम किया है, एक गृहस्थियों में उलझे हुए लोगों ने किया है क्या? मेरा ये जो सत्य है इसमें भरोसा नहीं हो किसी की, आप नहीं समझो कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, तो गंभीरता से देख लेना। तो वो तो शास्त्र सम्मत बात है, क्यों कि वो तो बहुत कम समय में बजने दो भैया, इनका आएंगे 10-20 हजार। क्या कह रहा था मैं कि देखो इस गुणस्थान में इस भूमिका में सम्मादर्शन नहीं हुआ है तो उपयोग का क्या हालत होती है, ये हमने पढ़ा है सब शास्त्रों में। हाँ सुदर्शन जी है कि नहीं है, कि तुम कहो कि हमें तो ऐसा हो, ऐसा होता ही नहीं है, होते ही नहीं है, तुम क्या करोगे क्या, तो तुम्हारी माने क्या सर्वज्ञ की माने। 24 घंटा हम धर्म ध्यान में रहते हैं, अरे इस भूमिका में सम्मादर्शन है वो तो अभी दिल्ली दूर है, तो इस भूमिका में मिथ्यात्व की भूमिका में ये होता ही नहीं है। भाई कुमार जी तो फिर बोलो, अब वो नहीं होता है तो अब क्या करना है? अच्छा है शांति से देखो, अब रागदेश किसी दो चार लोग रागदेश वाले होंगे भी अपने रागदेश से करेंगे तो उनका तो हित वैसे ही नहीं होना है, लेकिन बाकी का लोग तो वस्तु के स्वरूप को समझे ना, सत्य स्वरूप तो ख्याल में आए है? जो बिल्कुल निरपेक्ष लोग हैं, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि चुनाव होंगे दिल्ली के और जयपुर के राजस्थान के तो मैं किसी को वोट डालने भी नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं गया पिछले 20-25 साल से क्या माने, बिल्कुल भी रस जिनको नहीं है उनको तो वस्तु का स्वरूप समझने दो। क्यों क्या छड़ाला में से ये पंक्ति निकाल दे कि धन समाज गजराज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। क्यों कि निकाल दें छह बदली, कहीं पढ़ेंगे ये कहेगा कि सब सेठियों की निंदा करते हैं, अपने माँ अपनी नीचे से निंदा करते हैं। दादा मैं तो तुम्हारी भीलवाड़ा से भुगता रहा हूं, जब मेरी शादी नहीं हुई थी अभय कुमार जी, मैं 19 वर्ष में तो शादी हो गई थी, 18 या 17 वर्ष का होऊंगा, तो मैं भीलवाड़ा प्रवचन करने परीक्षण में गया था और दादा वहां काम करते थे, तुम्हें छड़ा लगी पंक्ति तुम्हारी भीलवाड़ा की बात है, ये भीलवाड़ा वाले बैठे हैं। ये मैं इसका अर्थ कर रहा था तुम्हारा गोरीलाल जी अजमेरा बिल्कुल मिर्ची, आप जानते हैं देखा होगा ना, हाँ मैंने भी सभा में खड़े हो क्या, बस सेठियों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। अब मेरे को मेरे दादाजी की उम्र के थे वो, अब मुझे उनसे क्या हो बे सेठिया, मैं कहेगा पंडित छड़ा लगा कर रहा था, लेकिन एकदम गुस्से में आ गए। तो मैंने उन्हें समझा कि बैठो शांति से, ये छड़ा लाने लिखा है उसका अर्थ कर रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे आपके कोई राग द्वेष नहीं है, तुम्हारे बराबर हमारे नाती पोते खेलते हैं, खेलते थे, ये बात भी सही है, समझ गए आप, हम अनुभवी हैं, तुम अभी छोकरे हो, छोकरे तो हैं हम, तो छोकरे हैं ये तो सही बात है, लेकिन तुम अनुभवी हो, लेकिन विषय कसाई के अनुभवी हो। अनुभव किसे कहते हो सेठ जी, आप ये जानते हो। और फिर मैंने बनासी दास का वो छंद सुनाया, अनुभव क्या क्या है दादा, वो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे और अनुभवता को नाम। फिर क्या हुआ होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। ये हुआ कि दूसरे दिन का प्रवचन करने के लिए पंचों को मेरे घर मुझे मनाने के लिए आना पड़ा। मेरा घर माना भाई साहब और भाभी वहीं रहते थे और मैं उन्हीं के पास ठहरा था, ख्याल में है ना, मनाना आना पड़ा बस खत्म। पर वो तो मैं तो रोने लग गया, क्या करता, तो मेरी आदत तो इन सेठियों से झगड़ने की तो तब की पड़ी है दिन में, सेठी माने सेठी लोग नहीं। नहीं तो जो मोहल्ला सेठी झगड़ में सेठी कैलाश सेठी समझने लगे कि सेठियों से लड़ते हैं, ये तो हमारे मित्र है। लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है, आप ये मानते हैं मैंने राग द्वेष से कहा होगा, मान लो भाई उसका फल मैं भोगूंगा, लेकिन ये वस्तु जो कही गई उस पर तो आप गंभीरता से विचार करो कि उसमें कितनी सत्यता है। अरे यदि उसमें सत्यता नजर आए तो स्वीकार करो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। क्यों कैलाशन जी, बस ये है कि द्वादशांग का पाठी जो कह रहे हैं समय सार पढ़ने के लिए, वो आत्मा को जानने के लिए ही कह रहे हैं कि सब हम आत्मा का ध्यान करेंगे, तो ध्यान करने के पहले कुछ चिंतन ऐसा तो कर लो। ध्यान में आत्मा का चिंतन करोगे ना, तो चिंतन क्या करोगे कि मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, एक हूं, तो इतना तो सीख लो, कुछ तो सीखना पड़ेगा ना पहले। तो ये ज्ञान ध्यान का विरोधी नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूं, ज्ञान और ध्यान एक दूसरे के साधक हैं। क्या मुनिराज को ज्ञानी ध्यानी कहा जाता है, और उन्होंने ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रसिद्धते, जो ज्ञान और ध्यान में लीन है वे तपस्वी हैं और वे प्रशंसा करने योग्य हैं। लिखा क्या नहीं लिखा, तो मुनियों के लिए भी उनने ज्ञान और ध्यान की प्रधानता बनाई, हमने ज्ञान और ध्यान की पार्टियां खड़ी कर दी, कुछ ज्ञान वाले बन गए, कुछ ध्यान वाले बन गए। अरे हम सभी ज्ञान वाले हैं और सभी ध्यान वाले हैं, क्योंकि हम सभी भगवान महावीर के भगत हैं, हम उनके अनुयायी हैं, कुंद कुंद के अनुयायी हैं, तो हम सब एक ही हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है। साल में है ना, कभी किसी का जोर कहीं पड़ता है, कहीं किसी का जोर कहीं पड़ता है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है।